اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 264 سے. یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے، مت ضائع کرو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر. اب دیکھیں، ہم نے پچھلی جو تین آیات پڑھی ہیں ابھی تک، آیت نمبر 261 سے، اس میں ہمیں صدقات کی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی یہ ترغیب بتائی گئی، اس کی فضیلت بتائی گئی ہے، ترغیب دی گئی ہے. اور جو پہلی آیت تھی، آپ دیکھیں اس میں ایک دانہ جو انسان ڈالتا ہے زمین میں، اس سے 700 دانے اس کو ملتے ہیں، 7 بالیں اور ہر بال پہ 100 دانے. تو ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ کتنی زیادہ فضیلت ہے، ایک کھجور، ایک ڈالر، ایک چیز بھی آپ خرچ کرتے ہیں، کئی گناہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں. تو یہاں پہ میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا، اچھی جگہ بھی مراد ہے کہ اچھی جگہ پہ ڈالنا، کیونکہ بیج اچھی جگہ پہ اگے گا، صحیح سے بیج بھی صحیح ہو، اور اس کے لیے نیت بھی صحیح ہو، نیت بھی درست ہو. تو جیسے آپ پیسے انویسٹ کرتے ہیں کسی جگہ پر، تو آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جہاں پہ آپ کو پروفٹ ملے گا آپ اس جگہ پہ ڈالتے ہیں. تو اسی طرح جو آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اس کو بھی آپ یہ دیکھ کے دینا چاہیے کہ کہاں پہ میری انویسٹمنٹ سب سے زیادہ مجھے اجر و ثواب دے گی. یہ سمجھ لیں ایک بزنس کی طرح ہی ہے نا، کہ بزنس میں بھی جیسے آپ کو منافع ملتا ہے، اللہ کے ہاں بھی جو آپ انویسٹ کریں گے اس کے منافع ہے، جو کئی گنا بھی مل سکتا ہے اور 700 گنا بھی مل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتا ہے. تو اس لیے اس کے اندر یہ بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے، کہاں میری انویسٹمنٹ بیسٹ مجھے صلہ دے گی، بیسٹ مجھے بدلہ اس کا ملے گا. پھر ہم نے پڑھا کہ من اور ادا نہ دو، ٹھیک ہے، من اور ادا سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے. اور کون سی دو چیزیں بہتر ہیں ایسے صدقے سے جو اذیت لے کر آئے بعد میں؟ قول معروف اور مغفرہ. تو آج ہم پڑھ رہے ہیں اسی سلسلے کا، آگے ہی سمجھ لیں اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ اب یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اور جو مال ہے، اس سے متعلق تقریباً اس صورت کے اینڈ تک یہی سارے مالی معاملات سے متعلق ہم بات پڑھیں گے. تو یہاں پہ بھی کیا آیا، مت ضائع کرو. اس لیے کہ انسان جتنا مرضی بڑا سرمایہ، جتنا مرضی انویسٹمنٹ کر دے، لیکن اگر اس انویسٹمنٹ کو آپ زیرو سے ملٹی پلائی کر دیں، بڑی سے بڑی رقم کو، تو وہ کیا بن جائے گی، اس کا اینڈ ریزلٹ کیا آئے گا، آنسر کیا آئے گا، زیرو. تو یہ من اور ادا بھی سمجھ لیں کہ زیرو ہے. اس زیرو کے ساتھ جب کوئی بھی صدقہ ضرب کھا گیا تو صفر ہی نتیجہ نکلے گا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا اپنی صدقات کو بچا لو، ضائع ہونے سے بچا لو. یہ دیکھیں ایسے شخص کی مثال نہیں ہے جو بخیل ہے، بلکہ ایسے کی مثال ہے جو اپنا مال دیتا ہے اللہ کے راستے میں. کلذی ینفق مالہ ریاء الناس، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال ریاکاری کے لیے، لوگوں کے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے. دکھاوے میں دیکھیں کیا ہوتا ہے، اس آدمی کی مثال نا جو من اور عزا کرتا ہے نا صدقے کے بعد، اس کی مثال ایسے ہے اس شخص کی طرح جو دکھاوے کی خاطر خرچ کرے، یعنی جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اس کا بھی مال ضائع ہو جاتا ہے. تو دکھاوے میں کیا ہوتا ہے، ہمیشہ انسان لوگوں کی نظروں میں اچھا بننا چاہتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اچھا بننا مطلوب ہوتا ہے اس کو. اس کو یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے نظر کے اندر کیسا لگ رہا ہوں، اس کو یہ ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں. اگر ذرا سا بھی دیتے وقت یہ احساس رہے کہ لوگ مجھے کیا دیکھ رہے ہیں، لوگ مجھے کیسا سمجھ رہے ہیں، لوگ مجھے بڑا سمجھے، اس کا بھی مال، اس کا بھی صدقہ ضائع ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ بہت خطرناک بات ہے. वो अल्लाह और ईमान, अल्लाह पर ईमान और उसका आखरत पर ईमान ही नहीं है। हालांकि देखें ये कि खिताब किसको हो रहा है, या अय्युहल्लदीना आमनू को, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला क्या फैसला दे रहे हैं, ये फैसला किसी इंसान का नहीं दिया हुआ, ये अल्लाह ताला का दिया हुआ फैसला है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वो ईमान ही नहीं रखता अल्लाह पर और यौम आखरत पर। ये क्यों कहा गया? इसलिए कि उसका पुख्ता ईमान नहीं है, पक्का ईमान नहीं है। अगर इंसान किसी को दिखाने के लिए कोई नेकी कर रहा है तो इसका मतलब अल्लाह पे तो उसका ईमान है ही नहीं। इसलिए कि अगर अल्लाह पर ईमान होता तो वो फिर जानता होता कि अल्लाह ने तो देख लिया, अल्लाह तो जानता है, अल्लाह के सामने है मेरा ये अमल, फिर उसको तो लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करनी ही नहीं चाहिए थी। मगर जो अल्लाह को जो लोगों को दिखाने के लिए, रिया के लिए अपना माल खर्च करता है, वो ऐसे ही है जैसे कि अल्लाह पे ईमान ही नहीं रखता। फिर तो वरना किसी को भी, किसी के भी इल्म में लाने की, किसी को भी बताने की, किसी के सामने ये बात करने की उसको जरूरत ही ना पड़ती। जिसने जानना था, जिसके लिए किया था, उसने जान लिया। तो अल्लाह ताला ने डिक्लेयर कर दिया उसको कि वो हकीकी ईमान वाला है ही नहीं, ना उसका अल्लाह पे ईमान है और ना उसका आखरत के दिन पे। आखरत के दिन पे क्यों नहीं है ईमान? इसलिए कि इसने तो चाहा इसको दुनिया में ही मिल जाए, इसने यही चाहा इसको दुनिया में लोगों की तारीफें मिल जाए, इसने ये चाहा वो दुनिया में बड़ा बन जाए। अगर इसका आखरत पे ईमान होता तो क्या वो ये ना चाहता कि मुझे आखरत में मिले? क्या उसको ये नहीं पता होना था कि आखरत का दिन कितना मुश्किल दिन है और उस दिन मुझे कितना ज्यादा जरूरत होगी इन नेकियों की? फिर वो आखरत में अजर पाने की उम्मीद रखता, मगर उसकी ने उम्मीद रखी दुनिया में ही अजर पाने की। हदीस में भी आया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे के लिए रोजा रखा उसने शिर्क किया, और जिसने दिखावे के लिए सदका और खैरात किया उसने शिर्क किया। और हम उस शख्स के बारे में भी जानते हैं जो तीन लोग सबसे पहले जिनसे जहन्नम की आग को भड़काया जाएगा, उनमें एक वो सखी भी है, बहुत सखावत करता था, दुनिया में बहुत देता था। तो जब अल्लाह ताला उससे पूछेंगे कि तुमने मेरा क्या हक अदा किया, तो कहेगा या अल्लाह मेरे पास जो कुछ था मैंने तेरे रास्ते में दिया। अल्लाह ताला फरमाएंगे नहीं, तूने मेरे लिए नहीं दिया, तूने इसलिए दिया ताकि लोग तुझे सखी कहें कि वाह वाह कितना दे रहा है, उसने तो इतना डोनेशन दिया, उसने तो इतना दिया, देखो ये कितना ज्यादा देती है। तुमने इसलिए दिया था और ये तुम्हें वाह वाह मिल गई दुनिया में, शोहरत मिल गई, तारीफ मिल गई दुनिया में, अब यहाँ तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। ये चीज किसी भी अमल के साथ आप इसको यानी रख सकते हैं मिसाल को, क्योंकि ना सिर्फ सदका व खैरात, ना सिर्फ माल अल्लाह के रास्ते में देना, बल्कि कोई भी काम, चाहे वो कितना ही बड़ा निकी का काम हो, अगर उसको रियाकारी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया तो रियाकारी भी वो जीरो है जिसके बाद एंड रिजल्ट जीरो हो जाएगा। आपकी चाहे नमाज है, जैसे मैंने आपको ये हदीस में बताया, चाहे रोजा है, चाहे हमारा ये कुरान सीखना है, पढ़ना है, चाहे हमारे किसी की मदद करना है, चाहे सदका व खैरात करना है, कोई भी अमल अगर उसमें जरा सा भी ये शाइबा तक आ गया कि लोग कैसा मुझे देख रहे हैं, मैं अच्छा बन जाऊं, या मैं लोग मुझे देखें कि मैं कितनी नेक हूं, मैंने कितना सबक कर लिया, मैं कितना खूबसूरत पढ़ती हूँ, मेरी कितनी अच्छी नमाज है, मुझे कितना हिफ्ज हो गया, मुझे कितना याद हो गया, मेरे कितने नंबर आए, लोगों को ये पता चले मेरी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, सब किया कराया गारत, मैं स्टेज पे खड़ी हो जाऊं, मेरा नाम पुकारा जाए, मुझे लोगों के सामने अप्रिशिएट किया जाए, सब चीजें ऐसी हैं जो रियाकारी हैं। और शैतान बाज औकात इंसान से बड़े बड़े नेकियों के काम तो करवा लेता है, तो ठीक है कर ले कर ले कर ले, अब इंसान जब अपने नफ्स के ऊपर बड़ा ही काबू पा के, बहुत अपने नफ्स के ऊपर यानी जबर करके कोई बड़े से बड़े नेकी के काम कर लेता है, नेकी करना ही भी मुश्किल है क्योंकि इंसान का नफ्स उसके रास्ते में रुकावट बन जाता है, तो इंसान बार दफा कर लेता है नेकी का काम, उसके बाद शैतान क्या करवाता है? ऐसी रियाकारी कराता है, सब कुछ खत्म करा देता है। इसकी मिसाल कैसी है? अब यहाँ पे इसको एक मिसाल से वाजे किया गया, फमसलहू कमसल सफवान, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे चिकना पत्थर। इतना पत्थर होता है ना, ऊपर ऊपर से मुलायम सा होता है, नरम सा लगता है, लेकिन अंदर से सख्त होता है। उसके ऊपर कोई चीज ऐसे सच यानी ऐसे मट्टी की तरह नहीं होता कि कोई चीज जड़ पकड़ जाए। तो पत्थर है उसके ऊपर अलैहि तुराब, उसके ऊपर क्या है? मट्टी। अच्छा, मट्टी जो ऊपर ऊपर है ना, उसकी वजह से वो क्या लग रहा है कि यहाँ पे भी कोई चीज उग सकती है। अब वहां पे वो चीज किसी ने बीज डाल दिया। अब ये बात यहाँ पे हजफ है, लेकिन समझ लें कि किसी ने बीज डाल दिया, कुछ खेती उग गई। फिर क्या हुआ? खेती उग गई, फअसाबहु वाबिलुन, तो पहुंची उसको तेज बारिश। फतरकहु सल्दन, तो छोड़ दे उसको साफ चटिया। क्यों? इसलिए कि वो शबे हो गई, जो सब चीज ऊपर लगी हुई थी ना उसके, जो ग्रीनरी थी। बजाहिर आपने कभी देखा होगा कहीं पहाड़ी इलाकों में, अगर आप जाएं वहां पे पहाड़ों पे कहीं फ्लैट से पत्थर होते हैं, उनके ऊपर कुछ मट्टी सी जम जाती है, तो ऊपर अगर कोई बीज डाल दे हल्की फुल्की वो निकल आएगी, लेकिन उसकी कोई जड़ नहीं है ना, कोई रूट नहीं पकड़ी हुई उसने, क्योंकि नीचे तो पत्थर है। तो अब उसके ऊपर बारिश जब बरसी, अब और कोई जरखेज जमीन होती तो और ज्यादा सब्जा हो जाता, और ज्यादा हरियाली हो जाती, बहुत ज्यादा बढ़ जाता अजर। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? वो जो थी हरियाली सब्जा वो शबे हो गया, और साफ चटियल पत्थर वैसे का वैसे ही निकल आया। अब ये मिसाल क्या बता रही है? ये रियाकारी की मिसाल है। यही मामला देखें इंसानों का होता है। इंसान ये क्या करते हैं, एक ऐसे पत्थर, एक ऐसी जमीन है जिसके ऊपर उसने बीज डाला है। बीज डाला, जाहिरी तौर पे क्या लग रहा है? जैसे बहुत शादाब है, दीनदारी बहुत नजर आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे यानी जो ऊपर ऊपर तुराब के ऊपर जो ग्रीनरी है ना, वो ऐसे लग रहा है जैसे कितनी नेकी का काम है, क्योंकि वो हरा हुआ हुआ ना, आपको नीचे से पत्थर थोड़ी नजर आ रहा है, आपको तो ऊपर ग्रीनरी नजर आ रही है। अब वो ग्रीनरी को देख के आप सोचते हैं, वाह भाई वाह, क्या अच्छा काम, वाह वाह, कितने अच्छे लोग हैं, कितने नेक लोग हैं, कितनी इसकी कमाई है भाई, नेकी हो तो ऐसी हो, कितना ये अल्लाह के रास्ते में देती है, या कितना बड़ा ये काम कर रही है। लेकिन देखने वाले को ये नहीं नजर आता कि इसके नीचे क्या है। एक बारिश आएगी और ये झूठी खेती जाया हो जाएगी, बह जाएगी। ये चट्टान के ऊपर जो मट्टी है उस पे की जाने वाली खेती ना, नुमाइशी खेती है, बस सिर्फ नजर आ रही है। ऐसी खेती किसी किसान के काम नहीं आती। बस एक बारिश होती है, वो चूंकि ऊपर ऊपर की थी, सतही थी, वो तो दिखावे की थी ना, तो वो बह जाती है। इसी तरह जब कयामत का रेला आएगा ना, सख्त दिन है ना, सख्त बारिश से मतलब है खराब भी। वाबिल उन, मैंने आपको बताया ना, वबाल भी इसी से होता है। वबाल हम कहते हैं ना, वबाल है, सख्ती है, खराबी। वो जो कयामत का सैलाब है ना, इसी तरह बहुत सारे लोगों की जो चिकने पत्थर पे की गई हुई खेती है, उसको बहा ले जाएगा, कुछ भी उनका बाकी नहीं रहेगा। इसलिए कि इसकी कोई बेस नहीं थी, इसके अंदर जो नीयत थी ना, वो दुरुस्त ही नहीं थी, नीयत ही रयाकारी थी। देखते हैं, बजाहिर हमारे यहाँ बहुत खूबसूरत काम किए जाते हैं, लोग बहुत बहुत तकरीरें करते हैं, बहुत बहुत रुकू सजदे नजर आते हैं आपको उनके, बड़े हकूक के ऊपर भी बहुत बातें होती हैं, लेकिन क्या होता है फिर उसके बाद? ये सब चीज किसके लिए होती है? सिर्फ दिखावे के लिए। इसलिए कि अंदर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उन्हीं लोगों को बाद में देखें जो इंसाफ की और इंसानियत की इतनी बातें कर रहे होते हैं, वो ही अपने घरों में अपने नौकरों के साथ अपने और लोगों के साथ बेइंसाफी कर रहे होते हैं। जो मस्जिद के अंदर इतने रुकू सजदे करते नजर आते हैं, वो बाहर इंसानों के साथ इतना घमंड तकब्बुर खुद पसंदी का मुजाहरा करते हैं। जो लोग इतनी इतनी हकूक के ऊपर बातें करते हैं, अपना वक्त आता है तो हसद बोझ और जुल्म के रास्ते पे चलने लगते हैं। तो जाहिर है ये तो दुनिया इम्तिहान की जगह है, यहाँ पे हर एक की आजमाइश हो रही है, और ये आजमाइश मामूल के हालात में नहीं होती, गैर मामूली हालात में होती है। लेकिन उसी वक्त हमारे जैसे लोग हार जाते हैं। हम बातें कर लेते हैं, लेकिन जब अमल के जरिए सबूत देने का वक्त आता है, तो पता चलता है वो बातें तो सिर्फ लोगों को दिखाने की थी और लोगों के सामने अपना आप नेक साबित करने के लिए थी, वो अपने आप को बहुत समझदार बताने के लिए थी कि मैं कितनी समझदार हूँ, मैं कितनी नेक हूँ, मैं कितनी बड़ी हूँ। ये वो सब इनके लिए थी, अमल में तो कुछ भी नहीं था। अल्लाह के सामने तो ये बातें नहीं चलेंगी, अल्लाह के सामने तो ये रियाकारी नहीं चल सकेगी। जैसे लोगों को यहाँ पे हम रियाकारी करके दिखावे की नेकियां उनके सामने उनको उनकी नुमाइश करके उनका दिखावा करके और हम सोचते हैं कि हम पास हो गए, लोगों ने हमें एक सर्टिफिकेट दे दिया कि वाह वाह बड़ी अच्छी हैं आप, तो बड़ी नेक हैं, आपकी क्या बात है, वाह 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 कर दी तो मैं पास हो गई। अल्लाह ने इन बातों से नहीं बहलना, लोगों को बहला सकते हैं, अल्लाह को नहीं बहला सकते, क्योंकि वो नियतों के अंदर तक जानता है। तो उनकी ये खेती जो है ना, खेती क्या है, वो जो जाहरी जाहरी अमल है ना, वो है वो खेती, और अंदर सफवान क्या है, वो अंदर की नियतें, वो जब आएगी ना बारिश, अब आपको समझ आ रही है कि हर चीज किस चीज को डिपिक्ट कर रही है, आपको समझना चाहिए इसमें सुफान क्या चीज है, तुराब किस चीज को डिपिक्ट कर रहा है, वाबिल क्या चीज है, सल्द क्या है। लेकिन सुफान वो है ना जो अंदर की नियत है, अंदर से तो सख्त है, ऊपर ऊपर से मट्टी उसके ऊपर पड़ी हुई है। अब वो मट्टी के ऊपर क्या है, जो मैंने आपको बात बताई कि वो अब खेती उग गई है, ये क्या है, जो जाहरी जाहरी हमारी नेकियां हम दिखा रहे हैं लोगों को कि हम सदके कर रहे हैं, हम पढ़ाइयां कर रहे हैं, हम सारा दिन बस अपने आप को इतना शो कर रहे हैं कि हम बस भाग दौड़ में लगे हुए नेकियों में। लेकिन एक वो क्यामत का रेला आता है, एक वाबिल आती है, वो क्यामत जो है ना, वो वाकई वबाल है, वो सख्ती का दिन आता है। फतरा बहु सल्ता, ओहो कुछ भी नहीं रह गया, कुछ भी नहीं रह गया, अब सल्द है सामने, वो जो नीचे था वो तो सामने आ गया, वो तो वॉश हो गई, वो तो कहाँ बह गई, वो तो पता ही नहीं चली। एक सख्ती का दिन आया, पता चल गया कि असलियत क्या थी, असलियत सामने आ गई, वो तो साफ चटियल मैदान, वो पत्थर है, खाली है वो तो। उस दिन तो अजर से बिल्कुल महरूम रह जाएंगे, ना किसी सदके का अजर, ना किसी नमाज का अजर, ना किसी कुरान पढ़ने का अजर, ना किसी हिफ्ज का अजर, ना तिलावतों का अजर, सब जाया। अल्लाह अकबर। बारिश होने पर तो होना तो ये चाहिए था, अगर सही नियत से किया होता, जैसे आगे मिसाल आ रही है, तो ये तो खेती और बढ़ जाती, यानी वहां पे 700 गुना मिलता, हमने पढ़ा है ना पहले, 700 गुना मिल जाना था। लेकिन ये बारिश कैसी हुई कि सल्द निकल आया, इसलिए कि वो पहले ही सफवान था, वो कौन सा जरखेज जमीन थी। अल्लाह बचाए इस अंजाम से, इंसान अपने आप को भी धोखे में रखे, क्योंकि जो देखने वाला है वो हरियाली देख के तारीफें कर रहा है, और इंसान वाकई इस धोखे में आ जाता है कि पता नहीं मैं वाकई कितनी नेक हो गई, हालांकि वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, उसके अंदर तो वही पत्थर है, वो जरखेज जमीन है ही नहीं, जिसमें नेकी जड़ पकड़ती और मजबूत होती और वो दाना 700 गुना होता, वो तो वो वाली जमीन ही नहीं है, ये तो अंदर से पत्थर है, क्योंकि नीयत ही खराब है। देखिए, दिखावे वाला लोगों को यही दिखाता है कि मैं भी खेती उगा रहा हूँ, मैं भी बीज डाल रहा हूँ, लेकिन अल्लाह के सामने जब खड़ा होना होगा ना, तो नजर ही नहीं आना कि वो खेती कहाँ गई। ला यकदिरूना अला शैइन व मिम शैइन मिम्मा कसबू, वो नहीं कादिर, कुदरत रखते नहीं कादिर होंगे वो अला शैइन, किसी चीज पर भी, मिम्मा कसबू, जो उन्होंने कमाई की, जो मेहनत उन्होंने की थी ना, आखिर मेहनत तो इन्होंने भी की, नमाज पढ़ने में मेहनत लगती है, कुरान सीखने में मेहनत लगती है, सदका करने में मेहनत लगती है, इंसान आखिर कमाई की, देना, अपनी जरूरियात को कट करके इंसान देता है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की थी ना, इसका अजर पाने पे वो कोई कुदरत नहीं रखते, तबाह हो गया इनका सब किया कराया, वो शबे हो गया, अब तो कुछ भी हाथ नहीं आने वाला, कोई इख्तियार नहीं इनको कि वो ले आए कोई अजर अपने लिए। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह हिदायत नहीं देता काफिर कौम को। काफिर कौन कौम कौन है यहाँ पे? इससे मुराद नाशुक्रे भी है कि जो नाशुक्री करें, और वो भी है जो कुफर के रास्ते पे चल पड़े, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने फरमाया ना, उसका ईमान ही नहीं अल्लाह और आखिर, तो वो काफिर ही हो गया, यानी रियाकारी कुफर है, कुफर की तरफ ले जाती है इंसान को, अब उसमें ईमान नहीं रहेगा, रियाकार तो मोमिन, रियाकारी मोमिन की सिफत है ही नहीं, ये काफिर की पहचान है, मुशरिक की पहचान है। और आज हमारे यहाँ देखिए कितनी रियाकारी है, कितना दिखावा है, ना सिर्फ दीन के मामले में, हर मामले में ही दिखावा है, आपने देखा हमारी जिंदगी सिर्फ पंप एंड शो ये बन गई है, धूमधाम ये दिखाना वो दिखाना, अपनी नुमाइश, अपनी चीजों की, अपने कपड़ों की, अपने जूतों की, अपने जेवरात की, अपने घरों की, अपनी गाड़ियों की, अपनी बच्चों की, कोई और कारनामों की नुमाइश, हर जिंदगी का फेज उठा लेना, हम सिर्फ नुमाइशी लोग ही रह गए, रियाकार, इसलिए कि हमारे अपने अंदर कुछ भी नहीं है, और रियाकारी में इंसान पैसा भी लुटाता है, वक्त भी लगाता है, भाग दौड़ भी करता है, कितनी मेहनतें होती है ना सारे कामों में, लेकिन इसका एंड रिजल्ट क्या होता है? जीरो। फिर भी हम देखते हैं बाज नहीं आते इन चीजों से, यही सोचते हैं फिर लोग क्या कहेंगे ना, लोगों के नजरों में, असल में हमने उनकी नजरों में जचना है, मेरी फिक्र ये है कि हम लोगों की नजरों में जच जाए, इनकी नजरों में बड़े बन जाए, इनकी नजरों में हमारी इज्जत हो जाए, उसके लिए हमारी कितनी भाग दौड़ है, जिस दिन हमारी फिक्र ये हो गई ना, अल्लाह की नजर में मैं क्या हूं, मैं अल्लाह की नजर में जच रही हूं या नहीं, उस दिन हमारी ये सारी बेकार की एक्सरसाइज है ना खत्म हो जाएगी, हम एट पीस होंगे, फिर हमें भी चैन और सुकून होगा, अभी चैन और सुकून किस लिए नहीं है, यार उसको राजी करना है, उसके नजर में बड़ा बनना है, उसकी नजर में बड़ा बनना है, और इन द एंड रिजल्ट क्या होता है, इंसान किसी की भी नजर में बड़ा नहीं बन पाता, लोग तो वैसे ही नाराज रहते हैं, और अल्लाह की नाराजगी तो उसने ले ही ली, क्योंकि उसको अल्लाह की नजरों की कोई फिक्र नहीं है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, उसकी नजर में भी मैं कोई अपना मकाम बनाने की कोशिश करूं, उसकी सारी फिक्रें जो है ना वो ये इन्हीं लोगों के पीछे, इन्हीं लोगों को राजी करने और इन्हीं लोगों के अंदर बड़ा बनने की। अल्लाह तआला हमें हिदायत अता फरमाए, या अल्लाह हमें रियाकारी से महफूज रखना। अब एक अगली मिसाल आ रही है ऐसे शख्स की कि जो अल्लाह की खातिर, उसकी खातिर सही तौर पे खर्च करने वाला है, और उसके बाद हम ऐसे शख्स की मिसाल अगेन देखेंगे कि जो फिर रियाकार है, तो दो मिसालें आज रियाकारी की हैं, एक इस आयत में, एक आयत नंबर 266 में, और बीच में अल्लाह ताला ने मिसाल दी है वो जो खालिस होके अल्लाह के लिए खर्च करने वाला है। ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله, और मिसाल उन लोगों की जो खर्च करते हैं अपने मालों को, किस लिए खर्च करते हैं? इब्तिगा मरदात अल्लाह, अल्लाह की रजा की तलाश में, उनकी नीयत क्या होती है? मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, वो खर्च भी करते हैं तो इसीलिए, इसका मतलब है कि अल्लाह की रजा उनको इतनी महबूब होती है, इतना अल्लाह ताला पे यकीन होता है इतनी अल्लाह से मोहब्बत होती है, इसीलिए खर्च करते हैं ना, और खर्च करने में फिर खुशी भी महसूस करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखें कोई भी इंसान किसी ऐसे के लिए खर्च नहीं कर सकता, अपनी मेहनत का, अपनी बहुत जो मशक्कत से कमाई भी कमाई है उसको यूं ही खर्च नहीं कर देता किसी पे, जब तक उसको वाकई उससे लगाव, उसे मोहब्बत ना हो। तो इसका मकसद क्या है? सिर्फ ये कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, और वह तस्बीत मिन अनफुसिहिम, और पुख्तगी के लिए, जमाओ के लिए अपने नफ्सों के। ये क्या चीज है? यानी वो खर्च फिर कैसे करता है? पहली तो इसके अंदर ये बात है तस्बीत मिन अनफुसिहिम की, कि साबित कदमी मिल जाए उनको, ईमान में साबित कदमी मिल जाए, ईमान में पुख्तगी आ जाए। जैसे खर्च करे, जिस हालात में खर्च करेगा, जितना जैसा खर्च करेगा उतनी ज्यादा इंसान को साबित कदमी मिलती है उसके ईमान में। ये कैसे है? देखिए इसकी मिसाल ऐसे समझें कि आपने अल्लाह के रास्ते में कुछ दिया। अब शुरू में तो आपको डर लगा कि अल्लाह पता नहीं मैं दे तो रही हूं लेकिन अब मेरी भी ये जरूरियात हैं, ऐसे हैं। अब एकदम आपने दिया, कुछ दिनों बाद अल्लाह ताला ने आपको कोई बोनस, कोई कहीं और से, कोई कहीं से बस आपके पास आ गया, जहां से आपने सोचा भी नहीं था। तो एकदम आपका दिल मजबूत हो गया ना, आपको ये हो गया, आपको अल्लाह की बात के ऊपर कैसा यकीन आ गया, साबित कदमी मिल गई, जमाव आ गया। तो ये तस्बीत जो है ना, पूरा यकीन है, साबित कदमी है, जमना है। तो ये जमने का जरिया बन जाता है। जो माल उन्होंने खर्च किया वो उसने उनको जमा दिया। दूसरा इसका माना ये है कि पूरे यकीन के साथ सोच समझ के खर्च करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि आज मिसाल के तौर पे कोई दर्स सुना और सुन के बस एकदम जोश आया और कहा कि मैं तो अपनी बस ये चीज दे देती हूँ। नहीं, क्यों? आरजी जज्बे के तहत नहीं, कोई टेम्परेरी ली, कोई एक दिल में बात उठी और फौरन इतने जज्बाती हो गए कि ये भी दे दिया वो भी। नहीं, बल्कि पूरे सबात के साथ, साबित कदमी के साथ, दिल के साथ, यकीन के साथ वो खर्च करते हैं। ठीक है, यानी ठंडे दिल के साथ, गौर से, वो फिक्र के साथ एक खर्च करना होता है ना, इरादे के साथ, किसी वक्ती जज्बे से नहीं। उसको कहा गया तस्बीत मिन अनफुसिहिम। तो दो माने यहाँ पे समझ आ गए ना आपको। एक माना ये कि नेकी पे साबित कदमी के लिए, कि इससे माल खर्च करने से साबित कदमी आती है कि इंसान, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, कि इंसान को और यकीन आ जाता है कि हाँ वाकई ऐसा है। या फिर देखिए इस तरह से भी होता है, जरूरी नहीं कि कोई आपको अगले दिन बोनस ही मिल जाए, मगर एक कभी कभी कोई मुसीबत होती है ना, वो भी टल जाती है। तो आपको ये होता है अच्छा, एकदम ख्याल आता है, नहीं वाकई वो मैंने सदका दिया था ना, पता नहीं अल्लाह ने उसी वजह से मुझे बचा लिया, तो साबित कदमी आई ना। इसी तरह ये भी होता है कि जैसे आप दिल में एक राहत, एक सुकून, एक बड़ा यानी इत्मीनान महसूस करते हैं, ये भी सबात है। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना, साबित कदमी के लिए ये खर्च करना बहुत जरूरी है। जब आप खर्च करते हैं तो फिर ये साबित कदमी आती है, फिर ये यकीन आता है। और दूसरी बात क्या हो गई कि साबित कदमी के साथ ही खर्च करें, ऐसे नहीं कि जज्बाती हो के। तो दो मैंने आपको इसके माने बता दिए। और सहाबा कराम ऐसे ही खर्च किया करते थे। अबू मसूद फरमाते हैं कि जब ये जब आयते सदका नाजिल हुई तो हम बोझ ढोने का काम किया करते थे, यानी बोझ उठाते थे, मजदूरी करते थे, ताकि इस तरह जो मजदूरी मिले उसको सदका करें। सोचें, कभी हमने भी ये सोचा कि हम कमाएं किस लिए? ताकि हम सदका करें। हम कमाते किस लिए? ताकि हमारी जरूरियात पूरी हो, ये पूरा हो, वो ले लें, वो ले लें, वो ले लें, एक लिस्ट पहले ही होती है। कोई ऐसे भी लोग थे जो कमाई इसलिए करते थे ताकि अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। तो उनको जो गल्ला या खजूर मिलती थी तो फरमाते थे कि हम वो ही सदका कर देते थे। मगर अबू मसूद फरमाते हैं कि आज इनमें से बहुत सो के पास लाखों दीनार है और सदका नहीं करते। ये बुखारी में ये रिवायत है। तो अगर कुछ भी नहीं है आपके पास सदका करने को, कहीं कोई रास्ता तो निकाल लें, कुछ कमाई करें, अल्लाह ने आपको हाथ पैर दिए हैं इस नियत के साथ, इस सोच के साथ, ताकि मैं सदका कर सकूं। और ये वो ही कर सकेगा जिसको सदका करने में अपना फायदा नजर आ रहा होगा। ये नहीं कि मैं दूसरे के लिए कुछ कर रही हूँ, इसका चलो फायदा हो जाए, चलो इन लोगों का कुछ बन जाए। जब इंसान ये कहता है ना, तो फिर वो एक तरह से उनको नीचा ही देख रहा होता है। चलो मैं कहती हूँ इसका कुछ बन जाएगा, चलो इसका कुछ हो जाएगा, हाँ यार जैसे मैं तो बड़ी चीज हूं। नहीं, उसका क्या बनेगा, मेरा बनेगा कुछ। देखिए कमजोरों मोहताजों पे खर्च करना ना एक सोच है जो आपको बहुत हेल्प करेगी खर्च करने में, बहुत हेल्प करेगी। और वो ही इब्तिगा मरदातिल्लाह, कि आपको ये हो कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाएगा। और ये भी किस तरह से आपने सोच डेवलप कर रही है, कि देखिए एक थिंकिंग आपको चेंज कर लेने से बहुत सारे कामों में ना बड़ा फायदा हो जाता है। देखिए अगर आप अपनी सोच ऐसी बनाएं कि एक दिन वो भी होगा जब मैं अल्लाह की अदालत में खड़ी होंगी, मैं कमजोर होंगी, मैं फकीर होंगी, मैं मोहताज होंगी, आज तो ये बंदा मेरे सामने खड़ा हुआ और मुझसे मांग रहा है ना, एक दिन वो आएगा कि मुझे सबसे ज्यादा जरूरत होगी अल्लाह की रहमत की। मैं जितनी बड़ी फकीर होंगी उससे बड़ा कोई फकीर नहीं हो सकता, मैं जैसे उस दिन खाली दामन होंगी उससे ज्यादा कोई खाली दामन नहीं हो सकता, मुझे जितनी मोहताजी होगी उस दिन उससे ज्यादा कोई मोहताज नहीं हो सकता, और मैं उस दिन अल्लाह ताला से उसकी रहम की भीख चाह रही हूंगी। मेरा रब अगर मुझसे राजी हो जाता है, मैं खर्च करती हूँ और इसकी वजह से मेरा रब मुझसे राजी हो जाता है, तो मुझे उससे भी उसकी रहम की भीख मिल जाएगी। आज मैं कमजोर पे खर्च करूंगी, कल मैं अल्लाह की रहमत पा सकूंगी, कल मैं उसकी रजा पा सकूंगी। समझ आई बात? तो अपने आप को फकीर महसूस करें कि मैं फकीर बन के खड़ी हुई हूँ अल्लाह की अदालत में, और मुझसे बड़ा फकीर कौन हो सकता है। ये जो मेरे सामने खड़ा हुआ है ये तो इतना मोहताज है नहीं जितनी ये मैं मोहताज हूंगी उस दिन। क्या ख्याल है? इंसान ना बड़ा फ्यूचरिस्टिक है ना, अपने फ्यूचर को बड़ा सिक्योर करना चाहता है। तो हम जब फ्यूचर का सोचते हैं, फ्यूचर के लिए मेरे ये कर लूं, फ्यूचर के लिए मैं ये सेव कर लूं, आए हम क्या बनेगा, उस वक्त कौन हमारा पूछेगा और ये ऐसे होगा, तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ बचा के रखें। हमेशा इंसान की ये नेचर है। तो उस फ्यूचर के बारे में सोचें जहां पे हम इतने ज्यादा मोहताज होंगे। तो अब आपको जो अपने सामने खड़ा हुआ बंदा है ना वो मोहताज नहीं नजर आएगा, आपको उससे ज्यादा अपना आप मोहताज नजर आएगा। मैं ज्यादा मोहताज हूं, ये तो क्या मोहताज है, ये तो कुछ भी नहीं है जितनी मैं मोहताज हूं। और मुझे तो अल्लाह की रजा चाहिए, और मैं इसको देती हूं तो मुझे उससे अल्लाह की रजा मिल जाएगी। तो फिर तो आपको ये सौदा कोई महंगा नहीं लगेगा, फिर आपको कुछ भी नहीं लगेगा मुश्किल के ये मैंने खर्च करना है। तो इसकी मिसाल पता है कैसे, जो इस तरह से खर्च करता है तस्बीत मिन अनफुसिहिम के साथ और इब्तिगा मरदातिल्लाह के लिए, तो उसकी मिसाल है कमसलि जन्नतिन, उसकी मिसाल है जैसे एक बाग है, बी रबवतिन, जो रबवा में है, ऊपर जगह पे। पता है आपको जो ऊंची जगह पे बाग लगे होते हैं, या जाहिर है वहां पे पानी और उसका कोई मसला नहीं होता, तो एक ऊंची जगह पे है ये बाग। अच्छा अब क्या है, असाबहा वाबिलुन, अब पहुंचती है उसको तेज बारिश। अब जब उसको तेज बारिश पहुंचेगी तो वो उसके लिए बड़ी फायदा मंद होगी, क्योंकि जाहिर है इस बाग की रूट्स जो हैं वो मजबूत हैं। तेज बारिश भी आएगी तो ये बह नहीं जाएगा, जैसे वो पिछला बह गया ना और सल्द सिर्फ आ गया, नहीं, तेज बारिश से और ज्यादा बढ़ेगा बुलंदी पे जो है। अच्छा फआतत उकुलहा दिअफईन, तो देगा फल अपना दुगना, वो दुगना डबल उसको फायदा पहुंचेगा। फइल्लम युसिबहा, फिर अगर ना पहुंचे उसको वाबिल उन तेज बारिश, फतल लो, तो फुहारी काफी है, तो हल्की बारिश ही काफी है। अगर बहुत तेज बारिश नहीं भी होती तो तब भी इसको फायदा ही फायदा, इसलिए कि जमीन अच्छी है ना, जगह अच्छी है, तो हल्की बारिश से भी खूब फसल लाएगा। तो ये किसकी मिसाल है? ऐसे बंदे की मिसाल। आप देखे ना कि ये नियत सही रखता है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर वाबिल आए तो फिर भी उसका दुगना फल है, और अगर तल आए तो फिर भी उसके लिए अच्छा है। इसका मतलब ये है कि वाबिल जो है ना, बारिश तेज यानी सदका करने में अगर उसकी नीयत जितनी ज्यादा खालिस है, जज्बा खैर बहुत ज्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग नेकी का जज्बा है, जितना जज्बा ये गहरा होगा उतने ही ज्यादा फायदा होगा उसको, उतने ही ज्यादा उसके जो फसल है वो कई गुना हो जाएगी। यानी जब अल्लाह के पास पहुंचेगा, तो जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी, एक खजूर ओहद पहाड़ के बराबर, एक खजूर को 700 टाइम्स भी कर लेना तो ओहद पहाड़ के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन इसका मतलब 700 टाइम्स से भी ज्यादा इस बंदे को मिला। एक खजूर से 700 खजूरें कर ले, क्या वो ओहद पहाड़ के बराबर हो जाएंगी? नहीं होंगी ना। तो ये कितनी ज्यादा अल्लाह ताला ने उसको बढ़ा चढ़ा के दिया, क्यों? इसलिए कि उसकी नीयत खालिस, उसका जज्बा खालिस, बहुत ज्यादा नेकी का जज्बा स्ट्रोंग था। तो जितना जज्बा खैर ज्यादा होगा उतना ही फायदा होगा। आप देखते हैं कई लोग जो है ना, ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, कहीं कौन हमें कोई बेवा औरत है वहां पे, कौन है कोई यतीम है वहां पे, कौन है जो जरूरतमंद है कहीं, फिर उनका पता कराते हैं, फिर उनकी हेल्प करते हैं, और छुपा के बिल्कुल करते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। तो हम जानते थोड़ी हैं, कई लोग ऐसे हैं जो ऐसी ऐसे भी काम करते हैं। और इसमें देखें, याद रखें, ये नहीं है कि वो कोई करोड़ों डॉलर देते हैं तो इसलिए उनका इतना ज्यादा हो गया, नहीं। तेज बारिश का मतलब ये नहीं है, बल्कि ये है कि जज्बा खैर कितना है, जज्बा इतना ज्यादा तेज बारिश की तरह। तो जब ऐसा जज्बा होगा तो फिर जाहिर है वो और ज्यादा फायदा मिलेगा। इखलास है ना इसमें, जितना इखलास है उतना फल दुगना। अब ये देख लेना, ये अच्छा, एक आपको हदीस मिसाल के तौर पे बताती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिरहम 1 लाख से बाजी ले गया, यानी एक दिरहम वाज अहेड ऑफ 100,000 दिरहम। एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये कैसे, कहां 1 दिरहम, कहां 1 लाख दिरहम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी जो बड़ा मालदार हो और अपने माल में से वो 1 लाख दिरहम खैरात कर दे, और एक आदमी वो है जिसके पास सिर्फ 2 ही दिरहम है और वो 2 दिरहमों में से 1 दिरहम खैरात कर दे, तो बस 1 दिरहम 1 लाख से बेहतर हो गया ना। ये निसाई की हदीस है। अरे कई लोग देखते ना, बहुत मालदार होते हैं, बहुत मालदार, तो वो 1 लाख रुपया दे दें तो कोई उनके लिए कोई मसला ही नहीं है, उनका तो कहीं शहर का ही ट्रिप लाखों रुपए का होता है, उनके लिए 1 लाख क्या चीज है। और एक बंदा है, उसके लिए उसके पास है ही 2 रुपए, 2 में से उसने 1 दे दिया, तो 1 रुपए वाला बाजी ले गया ना। इसी तरह ये देखें, ये जज्बात, हालात, आपकी किस तरह, क्या तरीका, आपने कैसे दिया, छुपा के दिया, जाहिर करके दिया, आपने किस नियत के साथ दिया, आपने कैसे हालात में, आपके हाथ कैसा था, तंग था कि आपका हाथ खुला था, आपको उस वक्त बहुत कुछ आने की और उम्मीद थी, या फिर आपको था कि अभी मेरा क्या बनेगा अपना, मतलब तो बहुत सारी चीजें इसमें काउंट करती हैं। आपने किस जगह लगाया, कितना देख के लगाया, तो ये सब चीजें यानी इतनी काउंट करती हैं कि इससे बहुत ज्यादा अजर में फर्क पड़ जाता है। और बिलफर्ज अगर वाबिल ना भी होती, सिर्फ हल्की फुल्की फुहारी होती, तब भी उसने फलना फूलना था, क्यों? जमीन अच्छी है। तो हर ईमानदार के खलूस, इखलास, नेक काम के एतबार से उसका अजर बढ़ता है। ये समझ आ गई बात? जैसे उसकी नियत होगी, जैसे उसका खर्च होगा, जैसे उसकी हालात होंगे, जैसे उसकी सूरत हाल होगी, अल्लाह ताला तो हर चीज को जानता है ना, तो उसके मुताबिक उसका अजर बहुत भी बढ़ सकता है, 10 भी मिल सकते हैं आपको, 1 डॉलर के 10 डॉलर भी बन के मिल सकते हैं, 700 भी मिल सकते हैं, 7000 भी मिल सकते हैं, 700,000 भी मिल सकते हैं। तो ये सब आपके अपने जज्बे के ऊपर डिपेंड करता है। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, बात वही आ गई ना जो मैं अभी आपको कह रही थी, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह को सब पता है, कौन रियाकारी से देता है, कौन छुपा के क्यों दे रहा है, कौन जाहिर करके क्यों दे रहा है, क्या उसके पीछे भी उसका क्या मोटिव है, कौन किस कितनी ताकत रखता था देने की फिर भी उसने निकाला, अल्लाह हर चीज को देख रहा है। तो कम अज कम अगर हमारा वाबिल जितना जज्बा खैर ना भी हो, तल जितना भी हो, इतना ही हो जाए, तो तब भी इस जो हमने सदका किया होगा उसका अजर मिलेगा, पुहार भी काफी है। अगर मट्टी में नमी है, मट्टी में वाकई जरखेजी है, और ये क्या है, मट्टी में जो नमी है, मट्टी में जो जरखेजी है, ये क्या ईमान है। ईमान के साथ ना जब जज्बा खैर बहुत शिद्दत वाला हो तो फिर तो जाहिर है बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, लेकिन अगर जज्बा खैर ज्यादा शिद्दत ना भी रखता हो तब भी फल उगते हैं, थोड़ी सी नेकी भी फायदा दे देती है। ये बात समझ आ गई है, रबवा का मतलब क्या है, वाबिल का मतलब क्या है, तल का मतलब क्या है, क्योंकि आपको अगर एग्जाम्पल्स में यही नहीं पता ना, बस ये आपको तफसीरों में भी कहीं मिल जाएगा कि ये इसे तेज बारिश या तेज बारिश से दुगना है, और फिर अगर फुहारी काफी है, लेकिन असल इसका माना क्या है, क्या चीज किस को रिप्रेजेंट कर रही है, वो नहीं जब तक पता ना तो फिर बात ना समझ नहीं आएगी। तो रब्वा क्या है, दिल में ईमान की तरोताजगी, यानी जरखेज है बाह पहले, इसमें निकियों को उगाने की सलाहियत है, पोटेंशियल है, ठीक है। अब उसमें खैर के जज्बात आ गए, इखलास आ गया, और इसके अंदर बहुत ज्यादा नेकी करने का गहरा जज्बा आ गया, तो बहुत ज्यादा देखें बाग फ्लरिश करेगा। और अगर तल भी होगा तो कोई मसला नहीं है, ये भी जज्बा खैर ही है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत आला दर्जे का नहीं है, लेकिन सवाब दोनों सूरतों में ही मिलेगा। पहली सूरत में जो अजर मिलेगा वो ज्यादा है दूसरी सूरत से। तो देखें मैं और आप चाहें तो एक ही सदके के ऊपर लीस्ट भी कमाई कर सकते हैं, और उसी सदके के ऊपर हम कई गुना भी कमाई कर सकते हैं, ये अब हमारे ऊपर है, ठीक है।